प्रातः क्लास चल रहा था 20 अक्टूबर 1966 आठवें पेज के मध्यांश में बात चल रही थी अभी हम तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बने सो तो बताया बाप को याद करने से बने। माम एकम याद करो शिव बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। फिर सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पुरुषोत्तम संगम योग के शूटिंग पीरियड में और कैसे दुनिया के मालिक बन जाएंगे ये अभी तुम्हारी बुद्धि में ठीक बिठाया नहीं है। किसने नहीं बिठाया है? बिठाने वाला कौन है? अरे शिव बाबा। ठीक है बिठाया नहीं है अभी। अभी माने कभी? अरे संगम युग में भी कभी। संगम युग 100 साल का है, है? 1966 की मुरली है ना? किसके द्वारा बिठाना है? शिव बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में ठीक बिठाया नहीं है। शिव बाप को किसके द्वारा बुद्धि में बिठाना है और किसके द्वारा ठीक बिठाया नहीं है? है ब्रह्मा के द्वारा ठीक बिठाया नहीं है। अभी और ना तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। बुद्धि में आया कब की बात है? 66 की बात है। कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझो और यही समझो कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर आने से पहले पहले हम अपने घर में रहते थे। हम आत्माओं का घर शांति धाम है। घर से बाद में बाबा ने हमको कहाँ भेजा है? सुखधाम में भेजा, स्वर्ग में भेजा। किसने भेजा है? शिव बाप ने हमको स्वर्ग में भेजा। परमधाम में शिव बाबा होता है? है शिव बाबा तो नहीं होता, कौन होता है भेजने वाला? है शिव बाप। तो वहाँ शूटिंग होती है भेजने की, है भेजने की और बुलाने की शूटिंग कहाँ होती है? संगम में होती है। पहले पहले तुमको शांति धाम भेजा, फिर तुमको शिव बाबा ने स्वर्ग में भेजा। तो कौन से शांति धाम की बात है? आत्माओं के धाम की बात है, आत्माओं के बाप के घर की बात है, या आत्माओं का बाप जिस आत्मा का नाम सिर्फ शिव है उसके शरीर का नाम नहीं है? वो जब इस सृष्टि पर आता है, कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तब उसको कहते हैं शिव बाबा। शिव बाबा माने साकार और निराकार का मेल। तो जिसके शरीर रूपी घर में आता है कौन आता है? आत्माओं का बाप। तो जिसके शरीर रूपी घर में आता है वो शरीर रूपी घर किसका घर हो गया? बाप का घर हो गया। तो पहले तुम्हारी बुद्धि बाप के घर में जाती है कि स्वर्ग में जाती है? पहले बाप के घर में जाती है तुम्हारी बुद्धि। तो तुम कहाँ के वासी हो? है तुम भारतवासी हो या नहीं हो? है भारतवासी हो। तो जो भारत है, जिसका पार्ट भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा हुआ, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है वो आत्मा। पहले पहले परमधाम वासी होती है, आत्मिक स्थिति में स्थित होती है। देवान में रहेगी तो ऊंची स्टेज में जाएगी? है नहीं जाएगी। अच्छा, दो चार सेकंड भी अगर देवान की स्थिति में आता है तो नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा? है नीचे जाएगा। माना निरंतर आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, जैसे मनुष्यों की बनाई हुई भगवत गीता में लिखा है, उदाहरण दिया है, ऐसे दीपक का जो निर्वात स्थान में रखा हुआ है, जहां हवा का अंश मात्र भी न हो, तो दीपक निरंतर एकाग्र होकर जलेगा या हिलेगा डुलेगा? एकाग्र होकर जलेगा। ऐसे तुम्हारी स्थिति आत्मा की प्रकृति के मध्य में कैसी बनेगी? नंबर वार, निरंतर आत्मिक स्थिति बने या अंतर पड़ने वाली हो? निरंतर आत्म स्थिति। लेकिन नंबर वार बनेगी या सबकी पहले नंबर में बन जाएगी? तो जो पहले नंबर में आता है वो ही आता है जिसमें सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, क्योंकि सबसे ज्यादा संग का रंग किस आत्मा को लगता है, है? अरे 500 करोड़ आत्मा है तो नंबर वार है, तो जो अब्बल नंबर आत्मा है जिसको कहते हैं अल्लाह अब्बल दीन, अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा, उसने अव्वल नंबर धर्म अव्वल नंबर दीन स्थापन किया, उसका नाम शास्त्रों में धर्म पिता के रूप में दिया है, धर्म का नाम स्थान के आधार पर होता है या धर्म पिता के नाम पर होता है, जैसे नाम है हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, तो धर्म कौन सा होगा, है? उन्होंने रख दिया हिंदू, लेकिन हिंदू धर्म का धर्म पिता कौन है, ये तो हिंदुस्तान नाम से हिंदू शब्द उठा लिए, जैसे क्रिश्चियन का बाप क्राइस्ट, या कि यूरोप मोहम्मद का, मुस्लिम धर्म का बाप मोहम्मद, न कि मुस्लिम देश, महात्मा बुद्ध का बाप वो बौद्ध धर्म का बाप बुद्ध, तो धर्म का नाम धर्म पिता के नाम पर होता है, तो जो हिंदू अपन को कहते हैं उनसे पूछो तुम्हारे धर्म पिता का नाम क्या है, किसने ये हिंदू धर्म स्थापन किया, तो जवाब देंगे, हैं? और क्रिश्चियन से पूछो तो वो जवाब देंगे या नहीं देंगे, मुसलमानों से पूछो जवाब देंगे या नहीं देंगे देंगे, बौद्धियों से पूछो तुम्हारे धर्म पिता का नाम बताओ तो जवाब देंगे ना, अपने बाप का नाम बताएंगे ना, और हिंदू अपने धर्म पिता को भूल गए, कोई भी धर्म शास्त्र वालों से पूछो तुम्हारे शास्त्र का नाम क्या है, तो क्रिश्चियन बताएंगे बाइबल, मुसलमान बनाए बताएंगे कुरान, और बौद्धी बताएंगे धम्मपद। तो देखो सात धर्म के फॉलोअर्स अपने धर्म पिता का नाम भी जानते हैं और धर्म ग्रंथ का भी नाम जानते हैं, हिंदुओं से पूछो तुम्हारे धर्म ग्रंथ का नाम क्या है तो बताएंगे नहीं बताएंगे, तो बताओ तुमको तो बाप ने बताया है, तुम्हारे धर्म पिता का नाम क्या है बताओ, हाँ, ब्रह्मा के पहलौटी के चार पुत्र हुए मानसी सृष्टि से, उनमें जो सबसे जास्ती ज्ञानी और योगी था उसके नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ा, सनातन माने पुराने थे पुराना, जिससे पुराना दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं। तो देखो सनत कुमार जो ब्रह्मा का ज्ञान में योग में सबसे तीखा पुत्र था, बड़ा पुत्र था, क्योंकि जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा ठहरा, ज्ञान में छोटा तो जरूर छोटा। ज्ञान ही नहीं होगा, पहचान ही नहीं होगी तो बाप को पहचानेगा, अपनी आत्मा के पार्ट को पहचानेगा, पहले पहचानेगा या नंबर बार बाद में पहचानेगा? बाद में पहचानेगा। तो छोटा हुआ या बड़ा हुआ? छोटा हो गया। तो देखो हमारे सनातन धर्म का नाम जो बाप आकर स्थापन करते हैं कलयुग के अंत में, जबकि सुदुनिया में सात धर्म मौजूद होते हैं, जिनके लिए गीता में कहा है सर्व धर्मान परित्यज्य। द्वापर युग में सर्व धर्म होते हैं या कलयुग के अंत में सब धर्म होते हैं? हैं? कलयुग के अंत में होते हैं। तो भगवान द्वापर युग के अंत में आता है या सतयुग के आदि में आता है? हैं? सतयुग के आदि में आएगा। जब दुनिया में सब धर्म मौजूद हो और सारे ही धर्म तमो प्रधान बन जाए, दुखदायी बन जाए, धर्म के नाम पर अधर्म चलता रहे, धर्म अर्थात दिव्य धारणाओं का नाम निशान न रहे, तब बाप आकर के नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सत्ययुग अर्थात सत्य की दुनिया, सतो प्रधान दुनिया। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती और अंत में तमो प्रधान होती। मकान भी पहले सुखदायी सतो प्रधान और अंत में टूट फूट जाता है, टपकता है तो दुखदायी तमो प्रधान। ये भी सृष्टि रूपी मकान है। इस सृष्टि रूपी मकान का बाप कौन है? इस सृष्टि रूपी मकान को नया बनाने वाला कौन है? एक ही ऊंचे से ऊंचा बाप, शिव बाप, जिसको दुनिया के धर्म पिताएं भी ऊंचा मानते हैं, अल्लाह कहते हैं। कहते हैं अल्लाह ने आकर अव्वल नंबर दीन की स्थापना की, इब्राहिम ने नहीं की, बुद्ध क्राइस्ट मोहम्मद ने अव्वल नंबर धर्म की स्थापना नहीं की। किसने की? अल्लाह, माना सबसे ऊंचा। तो देखो भगवान ही सबसे ऊंचा है। अंग्रेज लोग उसे हेवनली गॉड फादर कहते हैं, हेवन स्थापन करने वाला। मुसलमान लोग भी मानते हैं वो अल्लाह मियां जन्नत बनाता है। जन्नत में माना स्वर्ग में अल्लाह मियां ने आदम और हव्वा को भेजा, जो इस मनुष्य सृष्टि के आदि पुरुष थे, आदम। तो देखो तुम्हारी समझ में तो आ गया होगा कि तुम जब बाप के घर के वासी बनते हो, इस दुनिया में बाप कौन से शरीर रूपी घर में आता है, है? मुकर्ररत में आता है, जिसको दुनिया के धर्मों में आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ ऐसे ऐसे नामों से पुकारते हैं। तो वो आदम जिसमें आता है उसका शरीर रूपी घर ही स्वर्ग हो गया, वो शांति धाम हो गया। क्या हो गया? शांति धाम। और दुनिया की हर मनुष्य आत्मा जब आत्मलोक में जावेगी तो आत्मलोक में जाने से पहले इसी सृष्टि पर मन बुद्धि रूपी आत्मा से कहां वास करेगी, है? शांति धाम को याद करेगी। कब याद करेगी? जब आत्मिक स्थिति में स्थित होगी। तो शांति धाम में सृष्टि पर कौन सा हुआ, है? बाप का शरीर रूपी घर जो है वो ही शांति धाम हो गया। इसलिए बाबा ने जो संदेशियों के द्वारा चार मुख्य चित्र बनाए हैं, उन चित्रों में इसका कहीं जिक्र है कि वो ही स्वरूप है, वो ही रूपधारी है, कि जब इस दुनिया में महाविनाश होगा तो सभी दुनिया की आत्माएं, चाहे कोई भी धर्म की हो, उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा में कौन सा रूप विराजमान होगा, निराकार को याद करेंगे या निराकार जिस साकार में आता है उसे याद करेंगे? क्योंकि निराकार को याद सब नहीं कर सकते, सिर्फ धर्म पिताओं की आत्माएं हैं जो संपूर्ण निराकारी स्टेज को प्राप्त करती है, परंतु सदा काल के लिए नहीं। नंबर बार है, बाकी जो उनके फॉलोअर्स हैं वो निराकार को याद नहीं कर पाते, क्योंकि क्राइस्ट को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स अपने बाप के रूप में जन्म जन्मांतर क्राइस्ट को याद करते हैं या निराकार ज्योति को याद करते हैं? क्रिश्चियंस किसको याद करते हैं बाप के रूप में? क्राइस्ट को याद करते हैं। तो उनकी जन्म जन्मांतर की रग पड़ी हुई है साकार को याद करने की या निराकार को याद करने की? साकार को याद करने की रग पड़ी हुई है। साकार को याद करना सहज है और निराकार को याद करना कठिन है। गीता में भी लिखा हुआ, अव्यक्तात् गतिर् दुःखम् देहबद्धिरवाप्यते। जो देहधारी होते हैं उनको अव्यक्त आत्मा की गति प्राप्त करना दुख पूर्वक होता है, कठिनाई पूर्वक होता है। तो निश्चित हुआ कि दुनिया की सभी धर्मों की आत्माएं 500-700 करोड़ जब आत्मलोक में जावेंगी, सुप्रीम सोल बाप के घर में, वहां जाने से पहले कहां की वासी होंगी, उनकी मन बुद्धि किसमें वास करेगी, है? जिसे हम कहते हैं शिव बाबा, माना जिसमें सुप्रीम सोल साकार शरीर में निरंतर वास करता है। तो चार चित्रों में वो कौन सा चित्र है जिसमें वो रूप दिखाया गया है विनाश काल में? कौन से चित्र में? हाँ, जो सृष्टि वृक्ष का चित्र है उसमें ऊपर दिखाया है कि चतुर्थ देश युद्ध में जब सारी दुनिया में एटम बमों के फटाके होंगे और सारी दुनिया में भूकंप होंगे तो उस समय जो सागर का जल है वो उफान मारेगा। इतना जल स्तर ऊंचा उठ जाएगा कि सारी दुनिया के धर्मखंड डूब जाएंगे। जहां भगवान बाप आते हैं भारत देश में वो ही धर्मखंड बचेगा। तो देखो उस समय में जब सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी और एटम बमों के फटाकों से गर्मी के कारण सागर का जल खौलने लगेगा, क्या होगा? बॉइल्ड वाटर बन जाएगा। और भाप बन करके बहुत हिस्सा ऊपर उड़ेगा जिसके कारण इस पृथ्वी पर लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी। तो जो भी प्राणी हैं हवा में पृथ्वी में जल में रहने वाले वो जीवित बचेंगे या खलास हो जाएंगे? हैं? खलास हो जाएंगे, लेकिन उनके शरीर खलास होने से पहले उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ जाकर वास करेगी? हैं? शांति धाम भी तो दो हो गए। बाबा ने कहा तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो इस सृष्टि पर वो परम धाम कहाँ होगा? माउंट आबू में होगा। माने शिव बाप जो चैतन्य आत्मा है वो माउंट आबू पहाड़ जो जड़ पहाड़ है उसमें प्रवेश करता है। अरे चैतन्य आत्मा चैतन्य को पकड़ेगी या जड़ को पकड़ेगी? चैतन्य को पकड़ेगी। चैतन्य में मन बुद्धि होती है। चैतन्य भी दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक है मनुष्य जिसमें मन बुद्धि होती है और दूसरे हैं जानवर पशु पक्षी, उनमें मन बुद्धि नहीं होती है। तो जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो जड़ पहाड़ पर पहले आवेगी या चैतन्य में पहले आवेगी? ये तो भक्ति मार्ग में गुरुओं ने दिखाई दिया शास्त्रों में कि भगवान जानवरों का रूप धारण करके आया, घोड़े का अवतार लेके आया, सुअर का अवतार लेकर आया, माछले का अवतार लेकर आया। अरे भगवान इस सृष्टि पर किस लिए आता है? अरे पतितों को पावन भी किस आधार पर बनाएगा? जानवरों को पहले बनाएगा? क्यों, जानवर पतित नहीं है? बंदर तो मनुष्य से भी ज्यादा बदतर होता है, उसमें पांच विकार तो कितने जास्ती होते हैं। तो जड़ बुद्धि जानवर में आएगा, जब तुम्हें बुद्धि पहाड़ पत्थर पर आएगा या चैतन्य में आएगा? चैतन्य में आता है, जिसमें आता है उसका नाम देता है शंकर। क्या? शंकरो। सारी अशांत दुनिया में क्या कर देता है? शांति पैदा कर देता है। इसलिए शांति देवा के रूप में गाया हुआ है। क्या? कौन सा देवा?
शांति देवा।
सुख देवा नहीं है? क्यों सुख देवा क्यों नहीं? जब दुनिया में अशांति भर जाती है तो अशांत दुनिया में वो जन जन में ऐसा ज्ञान भरने का निमित्त बन जाता है, निमित्त माने साकार, कि हर मनुष्य आत्मा वो शांति देवा को पहचान लेती है और मन बुद्धि से उसका आश्रय लेती है, आधार लेती है। जैसा झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया गया है, शंकर का चित्र रखा हुआ है और विनाश काल में सारी आत्माएं उड़ करके हैं ऊपर जा रही हैं। कौन सी ताकत से? अपनी ताकत से नहीं, जो ज्ञान योग का अकूट भंडार इस सृष्टि पर बनता है। क्या? काय काय का? ज्ञान का अकूट भंडार। कैसे? ऐसा भंडार जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो क्या है? ज्ञान का योग का ऐसा खूट भंडार है जिसमें से पूरा ही निकाल लो तो भी पूरा ही बचेगा। अब बताओ, इस मनुष्य सृष्टि पर कलयुग के अंत में 84वें जन्म के अंत में सभी मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं या सत्व प्रधान होती हैं? हैं? तमो प्रधान हो जाती हैं। और सबसे जास्ती तमो प्रधान कौन बनता है? जरूर जो बनता होगा वो सबसे जास्ती सत्व प्रधान भी बनता होगा। जो चीज जितना नीचे जाएगी उतना ऊपर भी आ सकती है। जैसे गोताखोर होते हैं, जितना गहराई में गोता खाएंगे उतना जल्दी ऊपर भी आ जाएंगे। तो बताया कि इस मनुष्य सृष्टि पर वो शंकर वाली आत्मा है जो पहला पहला ऐसा पुरुषार्थी बनती है कि आत्माओं के बाप की सारी शक्तियां, ज्ञान की शक्ति और एकाग्रता अर्थात योग की शक्ति को अपने में समा लेती है। इसलिए दुनिया में इतने प्राणी हैं, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य देवताएं राक्षस, इतने प्राणी हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, ढेर के ढेर अरबों की तादाद में नाम होंगे, शिव के साथ किस नाम से जोड़ा जाता है? है? शिव के साथ सिर्फ है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। वो शंकर वाली आत्मा सारे प्राणियों को जो तामसी बन गई है उनको आकर्षित करती है, और आकर्षित करने के कारण उसका नाम संगम युग में पड़ता है कृष्ण, आकर्षित करने वाला। तो संगम युग कृष्ण की बात है, या सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा वो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को आकर्षित करेगा, संगम युग के कृष्ण की बात है। लेकिन गुरुओं ने, मनुष्य आत्माओं ने किसका नाम डाल दिया है? सतयुग के कृष्ण का नाम डाल दिया, क्योंकि वो तो बड़ा सलोना बच्चा है, सतो प्रधान बच्चा है। वो अशांत दुनिया जब हो जाती है, सारी दुनिया, तो उसका विनाश करता है, है? वो नहीं विनाश करता, क्योंकि शास्त्रों में जितने भी नाम है वो काम के आधार पर नाम है। क्या? शंकर का काम क्या देते हैं त्रिमूर्ति में? शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। तो कृष्ण करता है? है? कृष्ण ही नहीं करता, सतयुग का कृष्ण तो नहीं करता। कौन सा कृष्ण करता है? संगम युगी कृष्ण है, जो सारी अशांत दुनिया में शांति पैदा करने के लिए कोई आवाज नहीं, न मनुष्य की आवाज, न राक्षसों की आवाज, न पशुओं की आवाज, न पक्षियों की आवाज, सारी दुनिया में न कीड़े मकोड़ों की कोई आवाज। तो देखो, उस निमित्त का नाम कौन सा देवा? शांति देवा पड़ता है। अब बताओ, तुमको या सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पहले पहले शांति धाम कौन ले जाता है? 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 शांति धाम कौन ले जाता है? धाम माने घर। शिव बाप ले जाता है या शिव बाबा ले जाता है? बाप और बाबा में अंतर नहीं है? बाबा ग्रैंडफादर को कहते हैं, बाप के बाप को, तो देखो अंतर तो है। शिव बाप आत्माओं का सिर्फ बाप है, उसकी बिंदी आत्मा का ही नाम बाप है, उसका शरीर है ही नहीं। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो दुनिया के जितने भी संबंध हैं, वो सर्व संबंध भगवान के साथ जोड़े जाते हैं। सब जब शरीर है धारण करता है, तो बाबा माना ग्रैंडफादर का संबंध परम धाम में है या इस सृष्टि पर है? इस सृष्टि पर होता है। तो वो शिव बाबा पहले शांति धाम ले जाता है। कहाँ ले जाता है? शांति धाम, इसी सृष्टि पर शांति धाम या ऊपर कहीं? इसी सृष्टि पर शांति धाम ले जाता है। मुरली में बाबा ने बोला भी है ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा भी बाबा हुआ ना, है साकार शरीर है या नहीं, तो साकार निराकार का मेल बाबा हुआ। भले वो आत्मा माता का पार्ट बजाने में अब्बल नंबर गई, माता का काम होता है सहन करना, तो दुनिया ने सबसे जास्ती सहन किस आत्मा ने किया, ब्रह्मा ने किया। तो ब्रह्मा ने स्वर्ग में भेजा क्या है, वो तो स्वर्ग बनने से पहले, इस दुनिया में शांति आने से पहले ही शरीर छोड़ देते हैं। तो फिर स्वर्ग में भेजने के निमित्त कौन बनता है, है जिसको हम नाम देते हैं साकार निराकार का मेल शिव बाबा। वो शंकर में जब प्रवेश करे तीसरे नेत्र के रूप में, उस नेत्र का नाम क्या है, शिव नेत्र। शिव माने कल्याणकारी। इस सृष्टि पर ऐसी भी एक आत्मा है जो बाप के रूप में सारी मनुष्य सृष्टि का कल्याण ही कल्याण करती है, सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश भी करती है, तो भी कल्याण होता है या अकल्याण होता है, कल्याण ही होता है। तो वो आत्मा जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो शंकर वाली आत्मा के द्वारा बाबा ने बोला है कि अंत में तुम बच्चों को बाबा ऐसी दृष्टि देंगे, ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि देंगे कि तुम बच्चे ठहर नहीं सकेंगे इस दुनिया में। क्या ये शरीर और ये दुनिया भूल जाएगी। फिर दूसरी मुरली में बोला, बाबा तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जावेगा। हैं? अरे नैन तो इतने छोटे और बच्चे तो कोई इतने बड़े, कोई इतने बड़े, कोई कुंभकर्ण जैसे बड़े, कैसे बैठा के ले जाएगा। हैं? पहले ज्ञान देकर उनको आत्मा बनाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। और वो ज्योति बिंदु आत्मा को याद के द्वारा ऊपर उड़ना सिखाता है। तो तुम बच्चों को बोला नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा, उन बच्चों को नहीं, माना नजदीक कौन हुए, तुम बच्चे या वो बच्चे, हैं? वो बच्चे माने वो नहीं जो खिड़की के बाहर बैठे हुए हैं, उनसे भी कहा अंदर आके बैठ जाओ। तो दूसरे धर्म की आत्माएं जो बाद में आती हैं, वो ज्ञान को पूरा नहीं समझ पाती, न समझने के कारण फिर वो अधूरी आत्मा रह जाती है। संपूर्ण आत्मा बनती है नहीं बनती। इसलिए तुम बच्चों से कहा कि तुम बच्चों को बाबा, ये नहीं कहा बाप, कौन ले जावेंगे, बाबा नैनों पर बिठा कर ले जावेंगे, माना याद की ऐसी शक्ति भरेंगे कि वो आत्माएं अपनी देह को भूल जाएगी, देह के संबंधियों को भूल जाएंगी, देह के प्यारे प्यारे पदार्थों को भी भूल जाएंगी। तो ऐसी आत्माएं जो इस पुरानी दुनिया में सबको भूलती है, और बाप की याद में ऐसी तल्लीन हो जाती है कि उन्हें अपनी इंद्रियों का भी ध्यान नहीं रहता। इसलिए बताया अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो 16,000 गोप गोपियों से पूछो। तो तुम बच्चे बोला जो बाप की याद में अपने शरीर को शरीर की कर्म इंद्रियों के सुख को भी भूल जाने क्या ऐसा किसी जन्म में हुआ द्वापर कलयुग में है? द्वापर कलयुग के 63 जन्मों में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि हर स्त्री सारा जीवन पुरुष के अंग से सुख भोगती है और बहुत याद आता है, तो अंत मते सोगते हो जाती है। अंत में वो पुरुष का सुख देने वाला अंग ही याद आएगा या कुछ दूसरा याद आएगा? वो ही अंग याद आता है तो स्त्री का जन्म मिलेगा या पुरुष का जन्म मिलेगा? हैं? स्त्री को पुरुष का जन्म मिलता है और पुरुष को सारा जिंदगी स्त्री का अंग आता है याद। तो अंत समय में जब मृत्यु होती है शरीर की तो क्या याद आवेगा? हैं? क्या याद आवेगा पुरुष को? स्त्री का अंग याद आ जाता है। तो इससे साबित हो गया कि जो अंग बहुत सुख देने वाला समझा जाता है और बाप कहते हैं ये अंग दुनिया वालों को बहुत दुख देने वाला है, क्योंकि ये इंद्रियों में ब्रष्ट इंद्रिय कही जाती है, कर्म इंद्रियां। देवताओं का सुख ज्ञान इंद्रियों का होता है। तो ये साबित हो गया कि अंत समय में महाविनाश के समय में जब सारी सृष्टि का विनाश होता है तो मनुष्यों को उनमें भी मुख्य दो कैटेगरी है। एक वो मनुष्य देवात्माएं जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवताएं थे, भगवान ने जब मनुष्य को देवता बनाया तो पहले उस नई सृष्टि की पीढ़ी में आ गए ऐसी श्रेष्ठात्मा किस आधार पर आ गई है? ऐसी आत्मिक स्थिति में टिक गई कि अपने शरीर की उन इंद्रियों की भी याद नहीं रही जिन इंद्रियों से उन्होंने 63 जन्म बहुत सुख भोगा है और बहुत याद किया है। और अंत में भगवान को इतना याद करती है, अपनी आत्मा को इतना याद करती है, प्रैक्टिस करके इस पुरानी दुनिया से बैराग करके कि उनको वो देह है, देह के अंग है, देह के संबंध है, याद ही नहीं आते। तो उसको कहा जाता है अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से परे अतीत का सुख। अतीत माने बीत गया, जो बीत गया उसको याद करना अच्छा या जो सामने है उसको याद करना अच्छा? और जो सामने आने वाला है सुख की दुनिया वो याद करना अच्छा? वो याद करना अच्छा। तो देखो ये अभी तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि शांति धाम में बाबा पहले इस सृष्टि पर तुमको बुलाते हैं, नंबर बात, फिर तुम फिर शांति धाम से कहाँ भेज देते हैं? सुखधाम में तुम बच्चों को पहले भेज देते हैं, शरीर के साथ भेजते हैं या ये शरीर छूट जाता है तब भेजते हैं? हैं? शरीर छूट जाएगा? नहीं। जो पहली पीढ़ी में आने वाले 4.5 लाख आत्माएं हैं, उनका शरीर छूट जाएगा? नहीं छूट जाएगा। कभी कहते छूट जाएगा, कभी कहते नहीं छूट जाएगा है। अगर सभी का शरीर छूट जाएगा तो नई सृष्टि का जन्म कैसे होगा है? जैसे वो तथाकथित अंध श्रद्धालु ब्रह्मा कुमार कहते हैं कि जब सतयुग स्थापन होगा, स्वर्ग आएगा, तो परम धाम से स्टार आत्माएं नीचे उतरेंगी और प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगी। ऐसे होगा है? अरे ऐसे तो मुसलमान कहते हैं, वो कहते हैं अल्लाह मियां ने जन्नत बनाई, अल्लाह मियां ने आफ्ताब सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने जमीन बनाई। अरे बनाई कैसे वो तो बताओ। और अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अरे फरमाया मुख से जाता है या आकाश में से आवाज आती है? मुख से ही फरमाया जाए। तो ऐसी ऐसी अंधश्रद्धा की बातें ईश्वरीय ज्ञान में नहीं होती है। ईश्वर ज्ञान में तो साफ बताया जाता है कि जैसे दुनिया में डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियर की पढ़ाई यही पढ़ते हैं, और इसी दुनिया में डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। कोई को कहा जाए हमारे कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अरे कैसी अच्छी, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि यहाँ तुम डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ो, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ो, इतने साल पढ़ो और अगले जन्म में तुम स्वर्ग में चले, वो इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो कोई पढ़ेगा? ऐसे दुनिया में बुद्धू हैं, कहते हैं भगवान पढ़ाने आया है, और जब ये शरीर छोड़ देंगे तब हम नर से नारायण बनेंगे। अरे नर से प्रिंस बनेंगे कि नारायण बनेंगे? प्रिंस बनेंगे, नारायण तो बन ही नहीं सकते। नर से नारायण तो डायरेक्ट भगवान ही सृष्टि पर आता है तो बनाता है। तो तुम बच्चे जो बाबा के नैनों पर बैठ करके जावेंगे प्यार में है, प्यार से बैठ के जावेंगे या पांव रख करके जाएंगे नैनों पर? प्यार से बैठ करके जावेंगे। तो तुम बच्चे हो जो इस शरीर से ही परम धाम की स्टेज प्राप्त करेंगे, क्या शरीर में भी रहेंगे और आत्मिक स्थिति भी निरंतर धारण करेंगे, आत्मिक स्थिति भी धारण करेंगे और साथ साथ जो परम धाम है इस सृष्टि पर वो भी याद करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? इसलिए मुरली में बोला अपनी आत्मा को याद करो, आत्मा को याद करो, आत्मा के बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे एक को याद करें कि तीन तीन को याद करें? कभी कहते एक को याद करो, मामे कम याद करो, कभी कहते तीन तीन को याद करो। सब बुद्धू बनाते हैं। ब्रह्मा कुमारियां कह देती अरे भगवान की तो लहर है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ, पागल हो गया। अरे नहीं समझ पाते हैं तो ऐसे बोल देते। अब समझ में आया कि एक को याद करें या तीन को याद करें? क्यों? एक में ही तीनों रूप हैं। क्या वो एक ही जिसमें मुकर्रर रूप से शिव बाप प्रवेश करते हैं, वो ही संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर शिव शंकर एक हो जाते हैं, दोनों आत्माएं निराकारी, निर्विकारी और निर्हंकारी हो जाते हैं। तो जो आत्माएं दोनों मिलकर के एक हो जाती हैं, उनकी याद भारतवर्ष में अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया है। क्या आधा बाप आधी माता, माता पिता कंबाइन, तो क्या कहते हैं अंग्रेजी वो संस्कृत में कहते हैं त्वमेव माता, माने त्वम माने तू ही मेरी माता है। तो तू जिसको कहा वो एक है या दो चार है? एक है। त्वम माने तू माने एक, संस्कृत में युवाम दो को कहते हैं, यूयम तुम सब को कहते हैं। तो तुम बोला तमेव माता च पिता, तुम एक ही हो जो मेरी माता भी हो और पिता भी हो। तमेव सर्वम मम देव देव, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव माना तुमसे मेरे सर्व संबंध है। तो यहां के लिए बोला कि जो बच्चे भगवान के साथ प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ, जिस संबंध की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, उस संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे। क्या यहां अनुभूति नहीं की कोई संबंध की तो 63 जन्मों में 84 जन्मों में भी नहीं कर सकेंगे। अरे 63 जन्मों में 84 जन्मों में सुप्रीम सोल आता है संबंध जोड़ने के लिए, फिर शूटिंग तो हम यहां कर रहे हैं सब संबंधों की, कोई कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे हैं। भारतवासियों के लिए गायन है तो भगवान के साथ सर्व संबंध जोड़ते हैं। तो अब बताओ कि वो सर्व संबंध है के लिए कहां तड़पते रहेंगे और कहां नहीं तड़पेंगे? है संगम युग में शूटिंग करते हैं और ब्राड ड्रामा में प्रैक्टिकल होते हैं। तो वहां कोई आत्माएं हैं जो यहाँ शूटिंग पीरियड में नहीं समझ सकेंगी, पहचान सकेंगी, वो वहाँ उस संबंध के लिए तड़पती रहेंगे।
इसलिए बोला
कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा है। ये नहीं कहा एक शिव बाप है, शिव बाप आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है या आत्मलोक में रहता है? वो तो आत्मलोक में रहता है। फिर सदा कायम कौन रहता है जिससे सर्व संबंधों की हम वहां अनुभूति करेंगे? शिव बाबा। भले रहता तो है ब्रॉड ड्रामा में लेकिन कोई पहचान नहीं पाता क्योंकि वहां ज्ञान ही नहीं होता। देवताओं को तो ज्ञान होता ही नहीं और द्वापर युग से द्वैतवादी ज्ञान चल पड़ता है। अद्वैत ज्ञान तो होता नहीं तो विविचारी ज्ञान हो जाता है। विविचारी ज्ञान हो जाता है तो वो ज्ञान झूठा हुआ या सच्चा हुआ? विविचारी औरत को सच्ची औरत कहेंगे, सत्य वाली कहेंगे, सती कहेंगे या वैश्या कहेंगे? वो तो वैश्या हो गई, वो सच्ची कहां से होगी? तो सत्य को ही ये कहा जाता है। क्या जो सत्य है वो सदा काल है, जो झूठा है आज है कल कल नहीं होगा।